हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का आपके ही कार्यक्रम गजर में। घड़ी में बज चुके हैं 6:10 और वक्त हो चला है कार्यक्रम गजर का। आप सभी तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से कार्यक्रम गजर में हम कर रहे हैं जीजू दर्शन, और जीजू दर्शन में हम आपको मिलवाते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अलग अलग क्लब से। और आज किनसे मिलवाने वाली हूँ मैं आपको पता है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तरंग से, यानी कि जीजू का म्यूजिकल बैंड। और म्यूजिकल बैंड है तो जाहिर सी बात है गाने भी होंगे, म्यूजिक भी होगी और ढेर सारी मस्ती भी। काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी हमें इस बैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो संगवारी हो जाओ तैयार, आज है तरंग बैंड के कलाकार और पहली कलाकार के नाम है देवादित्य भट्टाचार्य।
हेलो अलंकृता, मैं देवादित्य भट्टाचार्य हूँ। सन 2013 से 2018 तक जीजीयू और तरंग बैंड का हिस्सा रहा हूँ। एट दिस मोमेंट मैं फीट कॉर्पोरेशन में एक क्लर्क के पोस्ट पर नौकरी कर रहा हूँ। और इतने साल हो जाने के बाद भी 2018 से आज 2024 हो चुके हैं, बट अभी भी मैं किसी न किसी तरीके से तरंग से मैं जुड़ा ही हुआ हूँ।
बिल्कुल सर, और यही वजह है कि हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं, ये जानते हैं कि आप हमें तरंग के बारे में कई सारी चीजें बता सकते हैं। आप तरंग में एज अ फाउंडर मेंबर थे या आप सीनियर मेंबर थे तरंग के?
एक्चुअली तरंग मेरे कॉलेज में आने के काफी सालों पहले से सक्रिय रहा है। करीब करीब 1 से 2 साल पहले से तरंग काम करता रहा है मेरे आने के पहले, यानी कि प्रोबेबली 2010 या 2011 से। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, जीजीयू का जो ऑफिशियल मैगजीन है उड़ान,
जी
तरंग उड़ान का ही एक हिस्सा हुआ करता था, तरंग उड़ान का म्यूजिकल बोर्ड हुआ करता था। बट समय के साथ ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन पाई हमारे पहले दो कोऑर्डिनेटर्स के चलते, आशुतोष सर और पारुल मैम के चलते, थैंक्स टू देम। और तब से हम एक इंडिविजुअल एंटिटी है, एक इंडिविजुअल बैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं जीजीयू में।
अच्छा, तो हाँ। जितना मैं जानती हूँ कि उड़ान एक मैगजीन क्लब है, तो उसके साथ तरंग एज अ म्यूजिक कंपेनियन कैसे काम करता था, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या?
सच कहूँ तो वो टाइम मैंने देखा नहीं, तो मैं एग्जैक्टली उस समय पर क्या कारण रहा होगा इस पर तो मैं स्पष्ट वो आइडिया नहीं शेयर कर पाऊंगा आपके साथ। बट कहीं ना कहीं जैसा मुझे लगता है कि उड़ान केवल एक मैगजीन नहीं था उन दिनों। अच्छा। उड़ान उन दिनों एक ऐसी एंटिटी था जो कि मीडिया से संबंधित सारी की सारी चीजों को हैंडल करता था, एंड बीइंग द म्यूजिकल एंटिटी, बीइंग द म्यूजिकल पार्ट ऑफ उड़ान, तरंग शायद उस जगह पर उड़ान की सहायता किया करता होगा, या फिर तरंग उस समय तो नाम नहीं था, तरंग तो बाद में नाम आया, हम उड़ान का म्यूजिकल बोर्ड थे।
तो मतलब उसके बाद तरंग को महसूस हुआ कि उसे अपनी एक यूनिक और इंडिपेंडेंट एंटिटी चाहिए और फिर ये तरंग बोर्ड बना।
एग्जैक्टली।
तो जब आप तरंग में आए तो उस वक्त तो तरंग का थोड़ा इनिशियल फेज ही चल रहा होगा।
हाँ, मोर ऑर लेस कहीं ना कहीं जिन सदस्यों ने तरंग को एज जूनियर मेंबर्स सपोर्ट करते हुए, ग्रो करते हुए देखा था, उन दिनों वे एक्टिव लीडर्स थे तरंग के। जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, मैं योगेश जिंगर सर का नाम लेना चाहूंगा, मैं उदीशा तिवारी मैम का नाम लेना चाहूंगा, मैं गणेश देव सर का नाम लेना चाहूंगा। ये कुछ ऐसे नाम है जो कि उन दिनों बहुत सक्रिय होकर के तरंग के ग्रोथ के पीछे काम कर रहे हैं, तरंग को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड देयर हैव बीन मैसिव इन्फ्लुएंसेस फॉर ऑल ऑफ अस। वहाँ से आज इतना ग्रो कर गया है तरंग, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
तो देख के कैसे महसूस होता है आप लोगों को कि उस समय जैसा आपने बताया कई सारी परेशानियां भी रही होंगी, हम उसके भी बात करेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि तरंग काफी अच्छा कर रहा है और बिलासपुर शहर में जहाँ पे ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, तरंग की एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी बन चुकी है। कहीं भी कुछ प्रोग्राम हो तो तरंग को बुलाया जाता है परफॉर्म करने, तो ये देख के आप लोग को कैसा महसूस होता है?
कहीं ना कहीं खुशी एक बहुत छोटा शब्द होगा, अगर मैं ये कहूँ कि खुशी होती है, उसके लिए एक बड़ा शब्द उपयुक्त रहेगा। हमको गर्व है, हम ओल्ड मेंबर्स को गर्व है कि आज के डेट में जो नए मेंबर्स हैं, जो एक्टिव सदस्य हैं अभी तरंग के, वो तरंग को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं वो तरंग के लिए, और कहीं ना कहीं तरंग का नाम बड़ा ही होता जा रहा है समय के साथ। ये पूरा का पूरा क्रेडिट जितना हमारे सीनियर्स को जाता रहा है, उतना ही हमारे प्रेजेंट मेंबर्स को भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
बिल्कुल, वो लेगेसी बड़ी अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
जी बिल्कुल।
तो आपने बताया कि स्टार्टिंग फेज चल रहा था और जो जूनियर मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से एक्टिव नहीं थे, कम एक्टिव हो गए थे, तो उस वक्त तो कई सारी परेशानियां भी आई होंगी,
क्योंकि जो नए मेंबर्स थे वे जूनियर थे और नए थे कहीं ना कहीं वे, और हमेशा किसी भी प्रैक्टिस में आप जाते हैं, किसी नए ग्रुप का मेंबर बनते हैं, तो वो आपके लिए एक अलग किस्म का लर्निंग कर्व, और शुरुआती दिनों में इट इज टफ टू टेक डिसीजन, इट्स टफ टू एक्ट ऑन योर ओन। आप कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स की ओर डिपेंडेंट रहते हो, आप अपने सीनियर्स के फैसले पर डिपेंडेंट होते हो, आप उनके गाइडेंस पर डिपेंडेंट होते हो, और फिर आप अगले स्टेप्स लेते हो, और इस वजह से कभी भी तरंग ने आई डोंट थिंक प्रॉब्लम फेस किया है, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं तरंग एक परिवार है, और एक परिवार में हमेशा जो पुराने सदस्य हैं वो नए सदस्य को गाइड करते हैं, और तभी जाकर के नए सदस्य चीजें सीख पाते हैं, और नए सदस्य नए एनर्जी के साथ उन्हीं वैल्यूज को उन्हीं शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और शायद अपना कुछ बेहतरीन सा कंट्रीब्यूट करके उसको बहुत थोड़ा बड़ा बना देते हैं। वैसा ही हमेशा से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है, तो दैट हैज नेवर बीन प्रॉब्लमैटिक टू अस। प्रॉब्लम कई सारी आई बट इसकी वजह से कभी नहीं आई।
जैसे आपने कहा अभी कि प्रॉब्लम्स कई सारी आई, तो किस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या कोशिश की, उसके बारे में कुछ बताएंगे?
जब आप एक बैंड की बात करते हैं, तरंग के साथ एक शब्द जोड़ करके आता है बैंड, जब आप एक बैंड की बात करते हैं तब आपको आपके दिमाग में छवि बन करके आती है कि एक बैंड एक ऐसी एंटिटी है जो कि अपना क्रिएटिव इंडिपेंडेंस लेकर के चलती है, आप खुद स्ट्रक्चर करके ही डिजाइन करके अपने ढंग से परफॉर्म करती है, इंडिविजुअलिटी होती है, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस होती है, और एटलीस्ट इलेक्शन की इंडिपेंडेंस होती है, ये सारी चीजें होती है। बट अगर आपको चीजों के लिए बाध्य किया जाए कि आप इन फाउंडेशन के बाहर आप नहीं जा सकते, बिकम अ लिटिल कॉन्स्ट्रक्टेड।
जी बिल्कुल, ये तो हम देख पा रहे हैं कि मतलब हर्डल्स तो हर चीजों में आती हैं और ये सारी हर्डल्स रही है तरंग की, पर आज तरंग जिस जगह पे है ये इस चीज का सबूत है कि तरंग ने सारी हर्डल्स को पार किया है।
हाँ, और अभी भी कई सारे हर्डल्स को पार कर रही है, द प्रोसेस इज स्टिल ऑन एंड आई डोंट थिंक कि इट विल एवर स्टॉप।
जब आपने तरंग ज्वाइन किया तो उस वक्त जो आपके सीनियर्स थे, मतलब कई सारी चीजें रहती हैं लाइक टीम बॉन्ड और समझाना सिखाना चीजों को, क्योंकि हम नए होते हैं कॉलेज में, चीजें जानते हैं, तो उस वक्त आपके सीनियर्स ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया और कैसे वो टीम बॉन्डिंग पे काम करते थे, उस बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो?
उनकी बॉन्डिंग पॉलिसी, उनके प्रैक्टिस, दोज वर सिंपली इंपेकेबल। मुझे आज भी याद आता है एक और हमारे करुणा सूर्यवंशी मैम, जैसा कि आप जानते हैं आप जीजीयू के स्टूडेंट रहे हैं, प्रोबेबली यू वर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्लब्स एज वेल, तो आपको पता होगा जनरल प्रैक्टिस में आपके एक स्किल्स देखे जाते हैं और उसके पीछे एक पीआई होती है और आपका ग्रुप डिस्कशन होता है
जी।
तो ऐसे में नॉर्मली कहा जाता है, मतलब मैंने उसको इन पर्सन फेस किया है, वो दहशत बना देती थी जितने बच्चे ऑडिशन देने आते थे, वो उनसे टफ क्वेश्चंस करते थे और बच्चे ऐसे ही होट गवा बैठते थे अपना। तो मेरे समय पर मुझसे भी काफी सारे टफ क्वेश्चंस किए गए और उसके बाद मेरे सामने मैम की एक इमेज बन गई थी कि ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है भाई साहब, इनके साथ थोड़ा सा पहले बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। एंड शी वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड इन तरंग बैंड, बेसिकली शी वॉज द फर्स्ट सीनियर टू कम ओवर टू मी एंड उन्होंने चीजें मेरे लिए इतनी कंफर्टेबल की, शी इज मोर लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, सच कहूँ तो आज भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ एंड आज भी कई सारे जीवन के टफ फैसले जब आते हैं या कोई टफ सिचुएशन आती है आई स्टिल डिस्कस देम विद हर एंड शी स्टिल हेल्प्स मी विद दोस सिचुएशन। आपको पता होगा तरंग बेसिकली यूनिवर्सिटी के कोई भी प्रोग्राम्स हो, कोई भी कॉन्फ्रेंसेज हो, उसमें सरस्वती वंदना, कुलगीत इत्यादि परफॉर्म किया करती है। तो जब मेरा पहला सरस्वती वंदना कुलगीत का प्रैक्टिस था, मुझे याद है हम करीब 21 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होकर के गए थे उस बैच में, जिसमें से करीब 12 वोकलिस्ट थे। 12 के 12 वहां पर डेरा डाल करके बैठे हुए हैं और सीरियस प्रॉपर सामने बैठे हुए हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, एक एक चीज। इवन उन्होंने मेरे लिए लिरिक्स लिखा हुआ है, मेरे सामने लिरिक्स लिख करके उन्होंने दिया मुझे, और एक एक चीज वो छोटी छोटी गलतियां जो है वो पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं। उदिशा तिवारी मैम की बात कर रहा हूँ मैं, तरंग ईद के ठीक पहले, कम से कम 30 दिन पहले हमारी प्रैक्टिस चालू हो जाया करती थी। उन दिनों तरंगी मतलब इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस, और ऐसे टाइम पर हम करीब करीब 30 से 40 दिन पहले से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे। तो उदिशा नाम का क्लास लग करता था 10 बजे, वो जबरदस्ती सुबह 6:30 बजे से आकर के तरंग रूम में बैठ जाया करती थी और वो नए स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस की लाइन लगाया करती थी। वो ये एक एग्जांपल हुआ। फिर मैं योगेश जिंगर सर की बात करूंगा। योगेश जिंगर सर वो ही वो कोऑर्डिनेटर बैक देन, मेल कोऑर्डिनेटर, और वो सारे के सारे मैनेजमेंट के धक्के हमारे कंधे कभी आने ही नहीं देते थे। इवन जब हम मास्टर्स कर रहे हैं तब उस टाइम पर भी उन्होंने हमें कभी पता नहीं चलने दिया कि क्या डिफिकल्ट सिचुएशन पोज कर रही है हमारे सामने, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे आसपास की जो सिचुएशंस बन रही हैं, चाहे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हो, ये सारी चीजें उन्होंने कभी हमारे सामने परेशानी के रूप में आने नहीं दी। वो जहाँ भी हमारा कुछ भी मैटर फंस रहा होता था वो जाकर के उसको सॉल्व करके आ जाते थे और चेहरे पर स्माइल लेकर के हमारे साथ प्रैक्टिस किया करते थे। मैं गणेश देव सर की बात करूंगा। गणेश देव सर उन दिनों मतलब हम मेल वोकलिस्ट के लिए वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थे। मैंने उन जितनी प्यारी वॉइस रिव्यू में किसी की भी नहीं सुनी। तो गणेश सर प्रॉपर आकर के एक एक छोटी छोटी चीज हम लोगों को समझाया करते, हमारे साथ बैठे बैठे। वो शाम के अंधेरा हो जाया करता था, उनकी क्लास कब की खत्म हो जाया करती थी, फिर भी वो हमारे साथ बैठ करके हमारी प्रैक्टिस करवाया करते थे। ये सारी चीजें भूलने लायक चीजें नहीं है, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं ये चीजें।
बिल्कुल, और यही सारी चीजें हमारी जो कॉलेज की कोर मेमोरीज हैं वो बन जाती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
और आपकी बातों में मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग सिर्फ एक जूनियर सीनियर का बॉन्ड नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर वाला बॉन्ड वाकई में शेयर करते हैं।
मैं अक्सर स्टूडेंट्स के ओरिएंटेशन में ये बात कहा करता हूँ, और पता नहीं इफ आई शुड से दिस ऑन रेडियो एट दिस मोमेंट ऑन, बट मैं हमेशा कहता था कि नए बच्चे जब भी मिलते थे मैं उनसे कहा करता था कि आप जब एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करोगे आप एक दूसरे के नाम के पीछे तरंग लिख करके उनका नाम सेव करोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जैसे एक फैमिली का जो सरनेम होता है
जी,
वो हम एक इंसान के नाम के पीछे लगाते हैं एंड दैट इज कॉमन, वैसे ही आप सबके नाम के पीछे आज से तरंग लग गया एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉमन। वो कहीं ना कहीं आपका सरनेम बन गया है और सेम सरनेम वाले तो एक परिवार वाले ही होते हैं।
काफी अच्छी बात
के साथ समस्या रहेगी।
बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ बताया और पूरी बात में एक 4 चांद लग जाएंगे यदि आपकी आवाज में कुछ सुनने मिल जाए तो।
ये वाला सवाल एक एवरेज वोकलिस्ट के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हम नॉर्मली इतने सारे गाने परफॉर्म किया करते हैं लेकिन उसके बावजूद जब असली में बारी आती है, जब सामने वाला बोलता है कि कुछ चुना दो, तो ऐसे में हमारे दिमाग में एक भी गाने नहीं आते।
बिल्कुल, यदि आप अपने पसंद की कोई 4 लाइनें गुनगुना दें तो बहुत बेहतर होगा।
है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्ता है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्ता है, लगने लगी अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी खाली, बिन तेरे कोई खालिस है हवा में, बिन तेरे
कोई खलिज है हवाओं में बिन तेरे।
तो आप सभी को कैसा लगा देवालय के भट्टाचार्य का गाना? मैं तो अभी भी झूम रही हूँ, नाच रही हूँ और गुनगुना रही हूँ। मेरे सर पे तो चढ़ गया है इनका गाना। चलिए चलिए, इससे पहले कि मैं इनके गाने के नशे में मदहोश हो जाऊँ, चलते हैं अगले कलाकार के पास और करते हैं उनसे कुछ बात।
हेलो, मेरा नाम स्निग्धा चौधरी है। मैं सरम में, जब मैं सेकंड ईयर में थी तब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर 2017 में मैं तरंग में आई थी। राइट नाउ मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ जीयू से, कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ मैं।
अच्छा।
और फाइनल ईयर है मेरा पीएचडी का अभी। तो यस,
तो अभी आप बिलासपुर में ही हैं?
हाँ, मैं बिलासपुर में हूँ।
तो मैम, अभी आप तरंग टीम के मेंबर हैं या आप एज अ गाइड उन्हें गाइड करते रहते हैं अभी बीच में?
एक्चुअली अभी मतलब मैं जब वापस पीएचडी में ज्वाइन हुई थी तब मैं थी इनिशियली, बट फिर पीएचडी का काम ऑब्वियसली बात है बढ़ गया मेरा बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से मैं तो टाइम नहीं दे पाई थी। बट मैं 22 तक तो थी, प्रॉपरली थी 22, मिड 23 तक थी। उसके बाद फिर मैं कॉन्वोकेशन 23 का जो कॉन्वोकेशन था तब तक मैं थी। उसके बाद फिर मेरे को तरंग छोड़ना पड़ा क्योंकि ये मेरा पीएचडी का फाइनल ईयर भी है, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ गया मेरे ऊपर। तो हाँ, मैं जाती हूँ कभी कभार, मतलब जब कोई मीटिंग वगैरह रहता है या कोई जरूरी बातचीत डिस्कशन ऐसा कुछ रहता है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि कॉलेज में ही रहती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जाना मेरा होता है वहाँ पे। लेकिन मैं कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक तो सीनियर हो गई हूँ और टाइम भी नहीं दे पाती हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए।
ये होता है वक्त के साथ व्यस्तता बढ़ती जाती है। तो आप मतलब कौन से बैच में तरंग का हिस्सा बनी थी? तरंग का कौन सा साल चल रहा था अगर आपको कुछ याद हो तो?
मेरे ख्याल से तरंग 2014 या 15 के अराउंड बना होगा। ठीक है, अलग है ऑटोनोमस तरीके से, बट एक्चुअली तरंग पहले उड़ान का पार्ट था। तो सही मायने में बोले तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ होगा। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से मैं शायद फोर्थ या फिफ्थ बैच में रही होंगी।
अच्छा, तो उस वक्त मतलब तरंग एक अच्छे पोजीशन में पहुंच चुका था, बट साथ में थोड़ी सी इनिशियल स्टेज भी चल रही थी, चीजें फोर्थ फिफ्थ ईयर में नई नई और चीजें एक्सप्लोर होती ही रहती हैं। तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था तरंग के साथ जुड़ के, किस तरीके के एक्सपीरियंस आपको मिल पा रहे थे?
अच्छा, ओके, मैं ये चीज थोड़ा सा पर्सनल है, मैं बताती हूँ फिर भी आपको, मतलब पता नहीं आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। ये की मतलब सबको पता ही है, मोस्टली तरंग वालों को तो पता ही है ये बात, मतलब सब जानते हैं इस बारे में कि मैं थोड़ी सी ना ट्रेजिक चाइल्ड बोल सकते हैं तरंग के लिए थी। क्योंकि ऐसा था कि मैं स्कूल में थोड़ी मतलब गाने वाने में थी मैं, तो आई वॉज लाइक कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। ठीक है, अच्छा गाती करके एक रहता है खुद के अंदर कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ करके लगता था मुझको। तो जब मैं तरंग में फर्स्ट ईयर में, मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ तो मैं उस साल मेरा नहीं हुआ, मतलब मैं ऑडिशन दी थी बट मेरा ऑडिशन नहीं क्लियर हुआ। तो देन आई अंडरस्टूड कि जैसा मैं सोचती थी कि तरंग में जाया जा सकता है इजीली, ऐसा नहीं है। तरंग का लेवल हाई था, तब भी हाई था, जब मैं फर्स्ट ईयर में ऑडिशन दी थी तब तरंग का लेवल हाई था और तब भी तरंग में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे, तब भी हुआ करते थे। मतलब मेरा कहने का मतलब जब वो स्टार्ट भी हुआ होगा वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि उस समय तक तो था बहुत ज्यादा। फिर मैं सेकंड ईयर में फिर से ऑडिशन दी थी, मेरा सेकंड ईयर ऑडिशन में भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब मैं फाइनल ईयर, मतलब मिड ऑफ सेकंड ईयर फाइनल ईयर में एक बार और फिर से ऑडिशन हुआ था 2017 अराउंड में, तब मैं फिर से ऑडिशन दी थी थर्ड ईयर में, मतलब आप ये मान लो कि थर्ड ईयर। ठीक है, मतलब जैसे मिड सेकंड ईयर का एंडिंग था और थर्ड ईयर का स्टार्टिंग ऐसा था। तो उस समय मैं फिर से ऑडिशन दी थी, तो मैं उस समय में और बहुत समय तक तरंग की एक ऐसी लौटी सिंगर थी या लौटी पार्टिसिपेंट थी जो तीन बार देके भी आई थी यहाँ पे। मतलब पहले कोई ऐसा होता था कि फर्स्ट टाइम में गिव अप कर देते थे लोग कि ठीक है नहीं हो रहा है इट्स ओके, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे बट मैं 3 बार ऑडिशन दी हूँ तरंग में आने के लिए, तो तरंग मेरे लिए हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा था, अभी भी है नो डाउट, बट मेरे को समय देते नहीं बनता है, बस वो अलग बात है। लेकिन मेरे लिए तरंग और मेरे सीनियर्स भी जानते ही है कि थोड़ी सी जुझारू प्रत्याशी टाइप की थी मैं, कि मैं, मेरा ऐसा था कि मेरे को आना ही है तरंग में चाहे जो भी हो, मतलब फॉर सो मेनी लॉन्ग टाइम जब तक मैं कॉलेज में रही हूँ, मास्टर्स तक जब तक रही हूँ, तब तक तरंग मेरी पहचान थी, मैं तरंग की मेंबर हूँ ऐसा, मतलब दो मैं इतना ज्यादा शायद मैं वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि फॉर द हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, बट स्टिल मेरे को इसी चीज से बहुत खुशी मिलती थी कि मैं एक तरंग की मेंबर हूँ, क्योंकि मेरे को जब मैं स्कूल में भी थी ना तब भी मुझे तरंग के बारे में पता था पहले से कि तरंग है, एक यूनिवर्सिटी में एक बैंड है जो तरंग नाम से, और बिलासपुर का पुराना सबसे पुराना बैंड, अगर एक रॉक बैंड बोला जाए ना तो तरंग सबसे पुराना बैंड है जो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया था। तो ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि मैं उस समय उस तरंग में चले गए थे, मतलब मेरे को ये बॉदर भी नहीं कर रहा था कि मैं पहले मतलब नहीं हुआ, मेरा बहुत बाद में हुआ, मेरे को नहीं बॉदर किया ये चीज, मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब मैं गई थी। तो हाँ ये थोड़ा सा फील भी लगा सुनने में, लेकिन हाँ ये मेरी एक्चुअल स्टोरी थी तरंग से जुड़ने को लेके, क्योंकि मुझे बट मैं अगर नहीं होता फाइनल ईयर में शायद मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में फिर से देती, भले 1 साल के लिए रहती बट मैं देती जरूर फिर से, मेरा ये था उस समय ऐसा थॉट था मेरा।
नहीं बिल्कुल मैं ये समझ पा रही हूँ, और ये आपकी जो आपने कहा स्टार्टिंग में कि ये थोड़ा सा पर्सनल है और सुनने में पता नहीं इंटरेस्टेड हो कि नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल हर लोग इस चीज को सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यही एक आर्टिस्ट होता है जो कि बार बार ट्राई करता है अपने आर्ट को शोकेस करने के लिए और आर्ट के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो हमेशा ट्राई करता है, और इस चीज से सभी लोग बहुत मोटिवेट होंगे।
आई विश बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली, मैं हर ऑडिशन में तो ये कहानी, मतलब जब भी ओरिएंटेशन होता है हम लोग का, मैं ये कहानी जरूर सुनाती हूँ, जो भी न्यू कमर्स रहते हैं, जो भी नए लोग रहते हैं, मैं ये डेफिनेटली बताती हूँ उन लोग को कि मेरा तो ये कहानी, मैं आई एम नॉट द फर्स्ट वन, मतलब बोलते हैं ना कि फर्स्ट चूजर, कि हाँ मेरे को पहली बार ऑडिशन दे के मिल गया था, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली मैंने कभी गिवअप ही नहीं किया था तरंग के लिए, स्पेशली मैंने कभी गिवअप नहीं किया था, मैं तो देती ही थी ऑडिशन, और मेरे को कोई रिजेक्शन में भी मेरे को उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा कभी कि अरे यार मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि तरंग में जिन लोग हैं ना उन लोगों का लेवल बहुत हाई था, हमेशा से बहुत हाई लेवल पे था। मैं बैंड परफॉर्मेंसेस कॉलेज में जाके देखी, उससे पहले मैं कभी देखी नहीं बैंड परफॉर्मेंस, दो मैं बैंड में थी लेकिन फिर भी बैंड परफॉर्मेंस एक्चुअली में क्या होता है मैंने ये तरंग में, मतलब तरंग यूनिवर्सिटी जाके मेरे को पता चला, नॉट इवन ज्वाइन करके, उससे पहले ही पता चला, जब मैं तब मुझे ऐसा लगता था कि अगर हो गया तो मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, बट अगर नहीं भी होता है तो इन लोग हैं, मतलब हमारे जो सीनियर्स है उन लोग सही में, मतलब दे आर टू आर्टिस्ट, उसमें से कई सारे लोग अभी एक्चुअल में भी आर्टिस्ट है, मतलब उन लोग मतलब बोलते हैं ना कि अभी उन लोग मतलब फॉर देयर लिविंग वही कर रहे हैं, अभी प्रोडक्शन में एज अ प्रोफेशन वही है कर रहे हैं, तो दे आर टू आर्टिस्ट एक्चुअली में बोले तो, उनके अंडर में थोड़ा बहुत भी सीख पाना इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, मेरे लिए तो था एटलीस्ट।
बिल्कुल, अभी कुछ और भी सीनियर से हमारी बात हुई और उन्होंने हमारे लिए गाना भी गाया और वो सुन के हम समझ गए कि हाँ ये है
दे आर एक्चुअली।
एग्जैक्टली, तो जब हम बार बार ट्राई करते हैं तो हम ट्राई करते करते सीखते हो जाते हैं, और आपको भी अपने अंदर ये चेंज जरूर महसूस हुआ होगा थर्ड ईयर तक, मतलब जब तीसरे बार आपने ऑडिशन दिया।
हाँ मतलब पता नहीं इम्प्रूवमेंट मेरे को तो समझ में नहीं आया, मे भी शायद मेरे सीनियर्स को आया होगा इसलिए थर्ड टाइम में मेरे को। अच्छा एक बात और भी है जो मैं कहना चाहती हूँ,
बिल्कुल
मुझे ऐसा लगता है और बीइंग अ सीनियर मेंबर जो इतना बार ऑडिशन हुआ है उसको देखते हुए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि तरंग में सिर्फ आप आर्टिस्ट है तो नहीं आ सकते, ये तो है, अगर एज अ मेंबर आप काम कर सकते हैं, एज अ मेंबर आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप आ सकते हैं। जैसे मैंने कई सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को मैंने देखा है जो दे आर अ गुड आर्टिस्ट बट ड्यू टू दैट बोलते हैं ना टीम वर्क नहीं कर सकते, और बैंड एक ऐसा जगह होता है, बैंड ये फिर आप शायद मेरे ख्याल से और भी जितने भी ग्रुप से आप देखे होंगे उन लोग भी ग्रुप फॉर्म में चलते हैं, तो इट्स नेवर अबाउट, मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नेवर अबाउट टैलेंट कि आप टैलेंट की वजह से पीछे हो जा रहे थे या मैं हो जा रही थी पीछे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बात होती है ना कि आप टीम वर्क कर सकते हो उसके लिए भी भरोसा होना चाहिए, भले फर्स्ट ईयर में आप छोटे होते हैं सब चीजों के लिए, लेकिन वो दिख जाता है सीनियर्स को, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि सीनियर सीनियर में इसे समझ पा रही हूँ कि जैसे मैं, मेरे को एक याद है मैं अपने फाइनल जब फाइनल ईयर के ऑडिशन में मैंने एक चीज बोला था, मेरे सीनियर सीनियर से पूछे थे जनरली कि आप क्यों आना चाहते हो तरंग में, ऐसा एक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हम पूछते ही है क्यों आना चाहते हो तरंग में। तो मेरा ये कहना था, मुझे अब तब तक मैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी क्योंकि मेरा हुआ नहीं था दो बार, तो मैं ऐसा बोल रही थी कि मुझे नहीं पता बट मुझे आना है, मेरे को बस तरंग के नाम से पहचाने जाना है, मुझे पता नहीं। तो इट्स अबाउट डेडिकेशन ऑल्सो कि आपके लिए कोई ग्रुप कितना मायने रखता है। हर कोई आर्टिस्ट है, आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, एवरीबॉडी इज आर्टिस्ट, लेकिन इट्स नॉट अबाउट ओनली द टैलेंट यू हैव, इट्स अबाउट द मतलब टैलेंट होने के साथ साथ आप अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाना है, वो चीज एक ग्रुप में ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से दैट्स द थिंग,
बिल्कुल
इम्प्रूवमेंट तो नो डाउट बट एट द सेम टाइम आपके मतलब अंदर कुछ होना चाहिए, मतलब वो स्पार्क होना चाहिए कि आप ग्रुप में रहकर सर्वाइव कर सको, दैट्स द थिंग।
बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ कि एक जो मेंबर्स के साथ आगे बढ़ने की चीज है कि सिर्फ अपने को ना देखकर सबके साथ आगे बढ़ना, वो टीम स्पिरिट भी इस तरह में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। मैम हम बात कर रहे हैं तरंग की और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तरंग एक म्यूजिक बैंड है तो हम गाने को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? अगर आप हमारे लिए कुछ गा पाए तो बहुत बेहतर हो।
गाना ओके, एकदम कॉट इन अ मोमेंट वाला सिचुएशन हो गया है तो।
कुछ भी अपने पसंद की चार पांच लाइनें आप गा सकती हैं, विल ब्लेस टू लिसन यू।
ओके, मैं लिरिक्स देख के गाऊंगी क्योंकि आई एम वेरी बैड विथ लिरिक्स।
बिल्कुल बिल्कुल
ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम था तो मैं पढ़ पढ़ के थोड़ा सा गला खराब हो गया मेरा, तो स्टिल मैं कोशिश करती हूँ।
कहीं बाकी रहना मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना बस इतना है तुम से कहना बस इतना है तुम से कहना बस इतना है तुमसे कहना बस इतना है तुमसे कहना।
की आवाज है और आप कह रही थी कि पढ़ पढ़ के गला खराब हो गया।
सोते नहीं है ना, रात को चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है तो गला पूरा खराब हो गया।
आई एम जस्ट वंडरिंग कि अगर आप कह रही हैं कि गले खराब में आप इतना अच्छा गा रही हैं तो आप कितना अच्छा गाती होंगी जब आपका गला और अच्छा रहता होगा। और गाना तरंग को डेडिकेट कर रही थी कि मैं रही ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत ही अच्छा था, हमारे श्रोता साथियों को भी आपकी आवाज जरूर बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
तरंग छोड़ रही हूँ, छोड़ते छोड़ते एटलीस्ट मुझे इतना तो मिला बोलने के लिए, तरंग के बारे में बताने के लिए मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिला।
बिल्कुल आपने कहा कि आप तरंग छोड़ रही हैं पर तरंग हमेशा आपके अंदर रहेगा, ये आपकी बातों से मैं फील कर पा रही हूँ।
थैंक यू।
आज तो पार्टी है, हम गाना सुनते सुनते बातचीत करेंगे, वो भी ओरिजिनल गाने। आज तो बहुत मजा आ रहा है ना, इतने सारे कलाकार सबसे हम सुनेंगे गाने, मैं ना पूरी लालची हूँ। तो अभी तो आपने दो गाने सुने, अभी एक गाना सुनना और बचा है। चलिए चलिए सिद्धा इतने सुंदर गाने के बाद अब चलते हैं आगे और बात करते हैं तरंग बैंड के वर्तमान कोऑर्डिनेटर से जिनका नाम है वैभव सरपथी।
हाय अलिंसिता, माय नेम इज वैभव एंड आई एम फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट सीजीयू एंड आई एम करंट कोऑर्डिनेटर।
ओके, तो अभी आप लॉ के कौन से ईयर में है?
अभी मेरा फोर्थ ईयर है।
तो आप कब से, मतलब आपने कहा कि आप तरंग में कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं टीम के साथ?
अभी ये मुझे एक साल अभी हो चुके हैं, जुलाई में एक साल पूरे हो जाएंगे मेरे को।
अच्छा, और आपने तरंग ज्वाइन कब किया था?
तरंग ज्वाइन करने की बात करें तो मैं ज्वाइन किया था 2022 में।
तो ज्वाइन करने के बाद जब आपने स्टार्ट किया तरंग में, मतलब बहुत सारी क्लब हैं, उसमें से आपने तरंग को ही क्यों चुना और तरंग को चुनने के बाद आपका सफर कैसा रहा तरंग के साथ?
इसकी बात करें तो मैं बचपन से ही म्यूजिक में इन्वॉल्व हूँ। बचपन से ही मेरा कहीं ना कहीं म्यूजिक से कनेक्शन रहा है, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे सिंगिंग हो, सब में मेरा इंटरेस्ट शुरू से बना था। तो और जब जीजीओ आया तब तरंग के बारे में पता चला। तो ये हर एक म्यूजिशियन के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है कि उनको कोई सा ग्रुप मिल जाए, क्योंकि हर एक म्यूजिशियन को पॉसिबल नहीं हो पाता कि उनको एक ग्रुप मिल पाए, लेकिन लकीली मुझे वो ग्रुप मिल पाया यहाँ जीजीओ आकर। और अभी तक सफर बहुत अच्छा चल रहा है, होपफुल से आगे भी बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्सपीरियंस और मिलना बाकी है अभी।
बिल्कुल। और वैभव, आप बिलासपुर के रहने वाले हैं या बाहर से आए?
नहीं मैडम, तो मैं हूँ प्रॉपर रायगढ़ से।
आप प्रॉपर रायगढ़ से?
या
जी। तो एज अ मेंबर जब आपने ज्वाइन किया तरंग, तो शुरुआत में आपको कैसे एक्सपीरियंस हुए?
तो जब तरंग ज्वाइन किया बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा ग्रुप ग्रुप कभी मिला नहीं था। ये पहला ऐसा म्यूजिकल ग्रुप था जिसके साथ मैं ऐसे लाइव परफॉर्म कर रहा था, और वहाँ पर इतने सीनियर्स भी मिले, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पर, बहुत ब्लेस्ड फील करता था। तो यही था स्टार्टिंग एक्सपीरियंस।
अच्छा, तो शुरुआत में तरंग ज्वाइन करके आपको बहुत ही खुशी मिली है, मैं जान पा रही हूँ। तो तरंग के साथ एज अ मेंबर आपने काम किया है, अभी एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहे हैं, तो एज अ कोऑर्डिनेटर आप क्या चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं?
अभी चैलेंजेस तो ऐसा था अनंकिता, अभी आपको पता होगा नेक्स्ट की टीम आई थी, तो नेक्स्ट की टीम जब आई तब टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि हमको हमारा अपना बेस्ट आउटपुट वहाँ पर देना था।
बिल्कुल, क्योंकि आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
हाँ, तो एक वो बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क था कि कैसे हम लोग अपना बेस्ट दे पाए, और एक प्रेशर उस टाइम पे था। और शुरू नेक हुआ, उसके कुछ टाइम बाद ही दूसरा नेक भी आ गया, तो उस टाइम ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत अच्छे से निकला नेक, इस बात की खुशी है।
बिल्कुल,
बहुत सक्सेसफुल निकला।
अलग सा एक एक्सपीरियंस रहा होगा
वो एक्सपीरियंस एक अलग ही था। वो शायद एक्सपीरियंस अभी हमको मिलने वाला भी नहीं है, अभी 2-3 साल कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तब तक हम पास आउट भी हो जाएंगे जब दूसरी नेक आएगी। वो जितनी बड़ी स्टेज थी उतनी बड़ी स्टेज और अपॉर्चुनिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मिस करेंगे उसको।
बिल्कुल। और जब आप लोग गाने गाते हैं तो तरंग का परफॉर्मेंस तो एक नेक्स्ट लेवल का ही होता है, पर जब आप लोग गाते हैं तो आप लोग ये चूज कैसे करते हैं कि कौन सी गाने परफॉर्म करने हैं? और कई बार तो आप लोग अपने लिखे हुए लिरिक्स भी परफॉर्म करते हैं, तो ये चीजें आप लोग चूज कैसे करते हैं?
संकिता, ऐसा है जैसे गानों की बात करें अगर, तो कोई सा फेस्ट वगैरह आता है, कोई सा जैसे हमको बॉलीवुड परफॉर्म करना होता है, तो ये हम सबसे पहले एंश्योर करते हैं किसके वॉइस में, क्योंकि सबका वॉइस टेक्सचर अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है, तो हर किसी को जरूरी नहीं है कि सारे गाने सूट करें। तो उन लोग अपने पसंद के कुछ गाने लाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि उनके वॉइस पे सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, हम ये देखते हैं वो जितने भी सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं ऑडियंस को किस तरह से उनको वाइब देगा, किस तरह से उनको पसंद आएगा, ये सब चीज को हम लोग विजन में रखते हुए चलते हैं किसी भी फेस्ट की बात हो।
बिल्कुल। तो जब तरंग के ऑडिशंस होते हैं और सिलेक्शन किए जाते हैं न्यू मेंबर्स, तो न्यू मेंबर्स के सिलेक्शन के वक्त आप लोग ऐसी क्या चीजें खोजते हैं जिसके बेसिस पे आप लोग न्यू मेंबर्स को वेलकम करते हैं अपने ग्रुप में?
उस टाइम की बात करें तो पहले तो हम इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट कैसा है उस सामने वाले का, म्यूजिक को किस वे से सोचता है, किस पर्सपेक्टिव से म्यूजिक को देखता है, वो बहुत मैटर करता है। फिर साथ ही साथ इनका म्यूजिक को लेते हुए क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो सब बहुत मैटर करता है इसमें।
अच्छा, तो ऑडिशन के वक्त ये सारी चीजें आप लोग परखते हैं और जांचते हैं? और जब परफॉर्म करती है तरंग, तो तरंग के नाम के आगे एक बैंड लगता है, तरंग बैंड।
हाँ।
तो उसमें तरंग के जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं वो भी तरंग के लोग ही बजाते हैं, गाने वाले तरंग के लोग होते हैं। जब तरंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स की तरंग के लोग ही वो करते हैं। तो ये सारी चीजों के भी प्रॉपर ऑडिशन होते हैं?
अगर जब ऑडिशन होते हैं तब सारी इंस्ट्रूमेंट्स के भी होते हैं, लिरिसिस्ट के भी होते हैं, मीडिया मेंबर्स के भी होते हैं।
अच्छा, और भी है तरंग में?
हाँ, तरंग में मीडिया मेंबर भी है।
जी जी।
ये 2022 के ऑडिशन में हमारे सीनियर्स इसको इंट्रोड्यूस किए थे कि मीडिया की जरूरत है तो मीडिया भी मेंबर का भी ऑडिशन हो।
अच्छा।
और साथ ही साथ सबका होता है, और जो इंट्रोड्यूस करता है वो बात ऐसा है कि जिसको सबसे अच्छा आता है हमारे टीम के अंदर इंट्रोड्यूस करना वो कर लीजिए।
तो मतलब ये 2020 से फिर मीडिया क्लब एक ज्वाइन हुआ है?
22
से।
हाँ, क्योंकि बाकी टाइम हमको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था मीडिया के लिए, फोटोज वीडियो मिलते नहीं थे, तो इससे बेटर हमको लगा कि एक नया ही मीडिया मेंबर, मीडिया टीम अपने टीम के अंदर इंट्रोड्यूस कर लूँ।
बिल्कुल। तो मतलब ऐसे समय के साथ और भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे तरंग टीम में?
हाँ बिल्कुल,
मान के चल सकते हैं।
अभी ऐसा भी, अभी ये चीजें ऑफिशियल नहीं हुई है, बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कुछ टाइम बाद जाके म्यूजिक क्लासेस भी खोल सकते हैं जीजू में,
जीजू के स्टूडेंट के लिए ही या फिर?
हाँ, जीजू के स्टूडेंट के लिए।
अच्छा, ये अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी तरंग की।
हाँ, तो इस अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुई है, बाकी होप्स तो की चीजें और अच्छी हो।
बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ जल्दी से शुरू हो जाए। अच्छा, हमने बात की काफी सारी तरंग के बारे में, और हम तो जानते ही हैं कि तरंग एक म्यूजिकल बैंड है, तो बहुत बेहतर हो अगर आप कोई अपनी पसंद का गाना हमारे लिए गाएं, हमारे श्रोताओं के लिए गाएं।
गाना?
ये बात होती है सिंगर्स की, गाने के लिए बोलो तो फटाक से रेडी अपना ऑल द मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह के साथ। गाने के लिए और इतनी सारी चीजें हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू लंकिता।
इतने अच्छे गाने सुन सुन के मेरा भी मन गाना गाने का हो रहा है,
पर अगर मैं गाई तो आप सबके कानों से खून आ जाएगा,
इसीलिए मैं अपनी इच्छा को अपने तक रखते हुए अब आप लोगों से इजाजत लेती हूँ, और जाने से पहले इतना कहकर जाती हूँ कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। अरपा रेडियो के चिट्ठी पत्री वाले कार्यक्रम चिट्ठी आई है मेल के रास्ते पर, और आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं अरपा रेडियो के मेल के माध्यम से, जो कि है arpaaradio@gmail.com। तो अब दीजिए अपनी सहेली अलंकिता को इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे अगले सोमवार, और फिर आपको मिलवाऊंगी डीडीयू के एक और क्लब और उसके साथियों से। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो अरपा रेडियो।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
की आवाज। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।